प्रमाद ही मृत्यु है। महाभारत के उद्योग पर्व में कथा आती है कि संजय ने सनत सुजातीय ऋषि को बुलाकर धृतराष्ट्र को उपदेश दिलवाया। इसलिए दिलवाया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्ष छोड़कर न्याय पर चले। सनत सुजाती ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई थी। उनमें एक बात यह भी कही कि हे धृतराष्ट्र, शरीर की मृत्यु को मृत्यु न समझ करके प्रमाद को मृत्यु समझो। ये प्रमाद है, ये मृत्यु है। हमारे शरीर की मृत्यु का हमको ज्ञान नहीं होगा, हम तो पड़े रहेंगे। हमारे शरीर तो कितनी बार मरे है कभी देखा? लेकिन अपने अंदर जो प्रमाद है वो तो हम जानते ही है ना, वो मृत्यु है। आज मैं आपके सामने इसका विस्तार करके कहता हूं। पहली बात तो ये प्रमाद क्या है, और दूसरी बात है कि प्रमाद मृत्यु क्यों है। तो करने योग्य कार्य को न करना ये प्रमाद है, और न करने योग्य कार्य को करना ये भी प्रमाद है। क्योंकि जो न करने योग्य काम होता है वो तो व्यर्थ का काम है या पाप का कर्म है। तो व्यर्थ का काम हो पाप का काम हो, दोनों तामसी काम है, इसलिए प्रमाद है। इस कार्य में जितना समय जाता है वह समय तो नष्ट हुआ ही, अर्थात उतने समय हमारे अमूल्य जीवन का काल के मुख में प्रवेश हो गया, इसलिए कहा जाता है कि प्रमाद मृत्यु है। दूसरी बात यह है कि व्यर्थ की चेष्टा और पाप का फल दुख होता है, और दुख भोगने के लिए जीवों को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और शरीरों का जन्मना और मरना होता है। इस प्रकार से ये प्रमाद मृत्यु है। मनुष्य का खास कर्तव्य है भगवान का भजन करना, जप करना, दान करना, तप करना, दूसरों का उपकार करना, तीर्थ करना, व्रत करना, माता पिता की सेवा करना, अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर की भक्ति स्तुति प्रार्थना करना, वेद श्रुति स्मृति इतिहास पुराण जिनको हम पढ़ सकते हैं उनका स्वाध्याय करना, वेदों का उपनिषदों का गीता रामायण का स्वाध्याय करना, यानी उसका मन लगाकर अध्ययन करना, उसके अर्थ और भाव को समझना, सत्संग करना, मन और इंद्रियों का विषय से संयम रखना, संसार से वैराग्य करना, अपने शास्त्रों में मनुष्य के लिए सब कर्तव्य बताए हैं। ये कर्तव्य कर्म आत्मा के उद्धार के लिए कल्याण के लिए है। मनुष्य के द्वारा इन कर्तव्यों को न करना प्रमाद है, क्योंकि हम कर्तव्य रूपी साधनों को नहीं करेंगे तो आखिर में मरेंगे। यदि साधन करके अपना काम बना लेते हैं तो फिर क्यों मरे, सदा के लिए अमर हो जाए। इस प्रकार मरने में जो कारण बना उसका नाम प्रमाद है, इसीलिए प्रमादी मृत्यु है। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। जो काम अपनी बुद्धि में बढ़िया से बढ़िया और विशेष हितकारी हो तथा जिससे हमारा कल्याण हो और दूसरे का हित हो, वो कार्य करना चाहिए। जिससे हमारा कल्याण होता हो वो काम तो सबके लिए हितकारी ही होता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना ये मुख्य काम है, अवश्य करना चाहिए। अब कोई कहे कि परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है, तो ये विलंब का कारण प्रमाद है एवं संसार के विषय भोगों में आसक्ति के कारण ऐसा हो रहा है। फिर कोई कहे कि संसार के विषय भोगों में आसक्ति क्यों है, तो इसके लिए कहा जाता है कि विषय भोगों में हमने सुख बुद्धि बना ली, ये खास कारण है। महाराज जी कहा करते थे कि बहुत वर्षों तक हमको इस बात का पता नहीं था कि अटकाव कहां है। ये जो सुख बुद्धि है, ये सुख बुद्धि कोई प्रकृति की चीज नहीं, हमारी खुद की बनाई हुई है। सुख बुद्धि से हमारा तात्पर्य सुख लेने की भावना से है। सुख बुद्धि क्यों है? मूर्खता से। तो ये मूर्खता कैसे दूर हो? तो भाई मूर्खता तो ज्ञान से दूर होता है। ज्ञान का फल क्या है? हमको क्या पता चले कि ज्ञान हो गया कि परम शांति मिले? भोगों से शांति थोड़ा ही मिलती है। इसलिए जब शांति मिले सब समझना चाहिए कि हमको ज्ञान हो गया। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? साधना से होगी। साधना कैसे हो? श्रद्धा से होगी। श्रद्धा कैसे हो? अंतःकरण की शुद्धि से होगी। अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? कि घर में बड़े जनों की, पूज्य जनों की, माँ बाप की, पति की सेवा करने से शुद्धि होती है। देखो घर के काम धंधों को हमने यूं ही समझ लिया है, भजन करने से ही कल्याण है। आ बात नहीं करा जितते ही है। भजन करने से कल्याण हुए पर भी सु जल्दी कल्याण घर में सेवा करने से हुए। देखो अंत में आई नहीं बात। साधना तेज करो। कैसे होगी? श्रद्धा से। श्रद्धा कैसे होगी? कि भाई अपना मन शुद्ध होगा तब होगी। मन शुद्ध कैसे हो? कि निष्काम भाव से परिवार में रहते हुए सबकी सेवा करो। ये सबसे बड़ा साधन बताया है। प्रमाद के अलावा और क्या हेतु है जो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो रहा है? तो कहते हैं कि हम परमात्मा को धोखा देते हैं, इसलिए भी परमात्मा में विलंब हो रहा है। प्राप्ति में हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। धोखा देने से भगवान कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वास्तव में भगवान को क्या धोखा देते हैं? धोखा तो हम अपने को देते हैं। कारण कि परमात्मा को तो कोई जरूरत है नहीं, इसलिए वह अपने आप को ही धोखा देता है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरलतम उपाय है भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए, भगवान के अर्पण कर दे, अपने आप को अर्पण कर दे और अपनी जो चीज वस्तु संबंध संसार के वे सब भगवान के अर्पण कर दे। हृदय से मानो ये सब भगवान के हैं। परिवार में जितने लोग हैं सब भगवान के हैं और जितनी वस्तु है सब भगवान की है। अतः उनकी वस्तु उनको अर्पण कर देना है। जहां जहां भी हमारी ममता वाली वस्तु है, ये मेरा है ये मेरा है, वो भगवान के अर्पण कर दो, आपका मेरापन बहुत आराम से आसानी से चला जाएगा। संसार की जितनी चीजों में मेरापन है या मैंपन है, मैंपन का जो अभिमान है वो शरीर में है और शरीर को भगवान के अर्पण कर दो कि भगवान आपका शरीर है। शरीर से संबंध रखने वाले जितने सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं, सजीव तो माने परिवार के लोग और निर्जीव माने रुपया धन आदि, ये चीजें भगवान के अर्पण कर दो शुद्ध मन से। हे महाराज आपके हैं, ये आपकी चीज आपको अर्पण करते हैं, सब आपकी है, हमारी पहले भी नहीं थी आगे भी नहीं रहेगी, बीच में हमने भूल से अपनी मान ली, बस महाराज आज से मैंने भूल हटा ली। इस भूल को हटा देने से भगवान की चीजों के ऊपर हम ये जो अभिमान करते हैं, ये मेरा है ये मेरी है, तो मेरापन अभिमान हट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आराम से हट जाएगा। ये कार्य ईमानदारी से सच्चाई से करना चाहिए। जब सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, फिर हम उसका उपभोग करें या उस पर अपना अधिकार चाहे, यह तो एक प्रकार की बेईमानी है, भगवान को ही धोखा देना है। इस धोखे के कारण से भगवान हमसे नहीं मिलते। कहते तो है हाँ सब चीज भगवान की है, यह भगवान की माया है, भगवान की काया है, बोलते हैं, परंतु भीतर में अपना अधिकार जमाते हैं, इसलिए ये चोरी है। यह चोरी पांच प्रकार से होती है। एक तो समय की चोरी, एक धन संपत्ति की चोरी, एक शरीर की चोरी, एक मन की चोरी और एक बुद्धि की चोरी, पांच चोरियां हैं। ये पांचों चीज भगवान के अर्पण कर दें, जितना अपने पास ऐश्वर्य पदार्थ है सब भगवान के अर्पण कर दें, तो ऐश्वर्य की चोरी खत्म हो जाएगी। शरीर भगवान के अर्पण कर दो तो शरीर की चोरी खत्म हो जाएगी। मन को भगवान के अर्पण कर दो तो मन की चोरी चली जाएगी, और बुद्धि को भगवान के अर्पण कर दो तो बुद्धि की चोरी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ समर्पण करने के बाद भी हमारे पास जो वस्तु है उसमें ममता रहती है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरा रुपया है, ये सब तो जब तुमने भगवान के अर्पण कर दिया तो फिर तुम्हारा कैसे रहा? वास्तव में तो पहले भी सब कुछ भगवान का था, अब भी भगवान का ही है, तुमने अपना मान लिया। अब मैं भगवान को लौटा देने वाली चीज को अब मैं वापस नहीं लूंगा। जैसे मंदिर में जाते हैं और एक रुपया चढ़ा दिया, चढ़ाने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि एक रुपया चढ़ा दिया, अब मैं यहां से एक रुपया दो रुपया जो वापिस ले लूं, ऐसी मन में ही नहीं आती, चढ़ा दिया मेरा नहीं है। ऐसे ही भगवान की चीज भगवान को चढ़ा दी, फिर मेरा कैसे मानते हैं? फिर इन रुपयों पर तुम शासन क्यों रखते हो? तो कहेंगे कि इनकी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए शासन करना तो उचित है, परंतु तुम रक्षक की जगह उसके भक्षक हो गए, तो एक प्रकार से चोरी हुई कि नहीं? चोरी कैसे हुई? बताते हैं, तुम भोजन आदि करते हो, कपड़ा पहनते हो, अच्छा ये भोजन किसका है, ये कपड़ा किसका है, ये शरीर किसका है, ये सब भोजन भी भगवान का है, कपड़ा भी भगवान का है, और तो और शरीर भी भगवान का है, तो फिर तुम क्यों खाते पहनते हो कि साहब शरीर की रक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा। अच्छा शरीर की रक्षा क्यों, कि देखो भगवान की चीज है, जब तक ये शरीर है इसलिए भगवान की वस्तु की हमको हिफाजत रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए, इसलिए हम करते हैं। शरीर भगवान के काम करना है, शरीर से भगवान का काम करना है, ये बात ठीक है। शरीर की रक्षा के लिए खाने और वस्त्र पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र और भोजन का उपयोग उचित है, परंतु ये सब शरीर की रक्षा के लिए करते हो या स्वाद शौकीनी के लिए, ऐश आराम के लिए करते हो, ये तो खुद को ही सोचना पड़ेगा। इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं करेगा। बोलने के लिए बोलना है कि भाई हम तो भगवान के लिए करते हैं, अंदर से आपका जो भाव है उसको आप टटोल करके देखो। शरीर की रक्षा के लिए भोजन करना ही पड़ेगा, वस्त्र पहनना ही पड़ेगा, तो ये उचित है, परंतु स्वाद भोग ऐश आराम की जो भावना है ये भगवान का कार्य नहीं है, क्योंकि इससे भगवान को कोई फायदा नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत चोरी है। तो चोरी विषयों की भी होती है और धन की भी होती है। जिस धन का या वस्त्र का उपयोग शरीर रक्षा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए किया जाता है, वह चोरी नहीं है, उसमें पाप नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल विषम, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ पुरुष पाप का भागी नहीं होता, अतः अनासक्त भाव से विषयों का सेवन करना चाहिए, आसक्त भाव से नहीं। इसीलिए ज्ञानी महात्मा अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से विषयों का सेवन करते हैं, इसलिए वे योगारूढ़ है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, जिस काल में वह विषयों में आसक्त नहीं होता तथा जिस काल में जो कर्म करता है उसमें आसक्त नहीं होता, उस समय सर्व संकल्प का त्यागी महापुरुष योगारूढ़ हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकला कि अपने शरीर को भोगों में नहीं लगाना चाहिए, शरीर की रक्षा में दोष नहीं है, इस बात की सावधानी रखो, शरीर की रक्षा करो, परंतु कहीं हमारी मन की वृत्ति भोगों में न फंस जाए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो पांच प्रकार के विषय हैं, इनके संसर्ग होने में कोई दोष नहीं है, परंतु इसमें रस लेना ठीक नहीं है। पुष्प इत्र फुलेल आदि भोग सामग्री कदाचित प्राप्त हो जाए, चल रहे सुगंध आ गई, इत्र की दुकान के पास में गए, अच्छी सुगंध आ गई, तो आहा बहुत अच्छी सुगंध है, ऐसे रस नहीं लेना चाहिए। बाग बगीचे में गए, फूलों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो उसमें रस नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हो जाए तो उस समय में भगवान का विषय आओ हो, देखो भगवान इत्र रूप से क्या सुगंधी फैला रहे हैं, भगवान पुष्प रूप से क्या सुगंधी फैला रहे हैं। जिस प्रकार जो भोग सामग्री प्राप्त हो उसको भगवान के साथ जोड़ दो। बढ़िया भोजन मिल गया, किसी ने अच्छे लागे भोजन, भोजन अच्छा करा दिया, तो देखो भगवान ने कैसा भोजन रखा है। भगवान का संबंध होते ही उसमें से रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। और अपने स्वभाव में चीज आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अपने स्वभाव में चीज आनी चाहिए कि जो हमारे शरीर के निर्वाह की सामग्री है, जैसे कपड़ा पहनना है, ओढ़ना है, बिछाना है, जो शरीर के काम आने वाली चीजें हैं, खाने पीने की भी चीजें हैं, वो सब शुद्ध सात्विक और तड़क भड़क वाली ज्यादा कीमती नहीं होनी चाहिए। यदि साधारण कंबल से काम चलता हो तो बहुत बड़े महंगी शाल से हम सर्दी रोके ये मन में भाव नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहां से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। बातें तो सुनते हैं हम ऊंची ऊंची और व्यवहार में हम खाने की शौक होती है, पहनने की शौक होती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। साधारण वस्तु का उपयोग करने पर आपके अंदर भोग वृत्ति खत्म हो जाएगी। कभी सर्दी का समय है और रात में सोने की जरूरत है तो भूमि पर सोने से बीमार हो जाओ या नींद कम आए, शरीर को कोई तकलीफ हो जाए और तो शरीर की रक्षा के लिए कोई अच्छा गदरा बिछा करके, गर्म गदरा बिछा करके सो सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। परंतु अपने अंदर ये भावना नहीं हो मुझे सुख मिले, आराम मिले, टाट चटाई से बिछाने से काम चले तो उसका भी उपयोग करो। आराम दृष्टि से कुछ मत बिछाओ, रक्षा के लिए बिछाओ। एक संत थे, वो किसी जगह पर गए तो वहां उनको नींद नहीं आई। खूब अच्छे मखमल के गद्दे थे, बढ़िया अच्छी सिराते मसनद की, लेकिन उनको नींद नहीं आई। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या बात है, आप जगे हुए क्यों हो कि मुझे नींद नहीं आती है? तो क्या करें, कैसे नींद आएगी, कोई हमको बोरा दे दो, फटा पुराना बोरा। तो वो बोरा दिया, बोरा लेकर के ऊपर छत पर जाकर सो गए तो खूब आराम से नींद आई। ऐसे होना चाहिए, शरीर में कोई दर्द न हो, पीड़ा न हो, बीमारी न हो, तकलीफ न हो, उस प्रकार से वस्तु का उपयोग करो। विशेष प्रकार से भोगों को भोग करके मौज करना, इसी का नाम ऐश आराम है। इसे एकदम त्याग कर देना चाहिए, विषयों का भोग एकदम छोड़ देना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों के विषय है। गीता जी ने कितनी ऊंची बात कही है कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो व्यक्ति राग द्वेष की भावना से रहित होकर इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है और मन उसका वश में है, उसको बड़ी चित्त में प्रसन्नता होती है। ये शांति का उपाय है। आज हम लोग जितने भोग सामग्री के बटोरने में लगे हैं, दिखता तो ऐसा है कि हम बहुत ऐश आराम बटोर रहे हैं, पर ऐश आराम नहीं बटोर रहे, बहुत बड़े दुखों को हम बटोरने चले जा रहे हैं। यद्यपि ये सब विषयों में विचरण करने से होता है, पर सुख बुद्धि से विषयों में विचरण करेंगे तो ऐसी शांति नहीं मिलेगी। देखो, नेत्र का काम है देखना, तो नेत्र से देखो भाई, रास्ते में कोई कांटा न आ जाए, कोई ठोकर न लग जाए, कोई भी चीज है देखो अच्छी तरह से। परंतु किसी स्त्री को नेत्र के द्वारा पाप बुद्धि से मत देखो, धर्म बुद्धि से देखो। ऐसे ही नाक का काम है सुगंध लेना, परंतु ये सुगंध भोग दृष्टि से इत्र फुलेल को सूंघ करके लेने के लिए नहीं है। नाक की जो गंध होती है वो इसलिए है कि जो चीज अच्छी नहीं है, जिसमें बासीपन आ गया हो, उसका त्याग करो, क्योंकि उससे आपको शरीर से तकलीफ हो सकती है। तो बासी चीज है, दुर्गंध की चीज है, उसका सेवन मत करो। लेकिन यदि भगवान की चढ़ाई हुई तुलसी है, मकरंद की सुगंध है, बढ़िया अच्छा फूल गुलाब की सुगंध है, और भगवान के वहां जाने पर आपको यदि प्रसाद रूप में इत्र भी दिया गया है, तो हृदय में पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित होते हुए उसका उपयोग कर सकते हो। वो भोग बुद्धि नहीं है, वो भगवान की प्रसाद बुद्धि है। नहीं लेने में तिरस्कार होता है, मंदिर में गए, किसी ने कहा ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ इत्र दे दिया साहब, इत्र ले हो। तो थोड़ा सा ले लिया और वो प्रसाद समझ के ले हो। इसी प्रकार से कानों से सुनने का काम है, तो आप संसार के भोगों की बातें मत सुनो, सत्संग सुनो, कथा कीर्तन सुनो, कल्याण की बातें सुनो। सिनेमा आदि के गंदे गाने सुनना हानिकारक है। कानों का काम सुनने का है, तो कानों से हम सुने किंतु राग द्वेष रहित होकर करें। ऐसे ही जिह्वा है, भोजन है, भूख लगी है, तो भूख से शरीर को बड़ी तकलीफ होती है, तो राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध सात्विक भोजन करो। जब सारी वस्तु हम भगवान के अर्पण कर दी, तो फिर इसका उपभोग करें, भोग बुद्धि से उसको स्वीकार करें, ये चोरी है। जैसे किसी ब्राह्मण को आप गाय दे दे और फिर उस गाय को चराने के लिए ले जाए, बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु उस ब्राह्मण की नजर बचाकर आप उस गाय का दूध दूले और आधा अपने घर ले गए और आधा उसके घर पहुंचा दिया कि लो साहब आपकी गाय ने दूध दिया है, तो बताओ ये चोरी हुई कि नहीं। इसी प्रकार से सब चीज भगवान के अर्पण कर दी, तो भगवान की सब चीजों की रक्षा करना आपका काम है। किसी तरह अपने ऐश आराम भोग में रुपयों को खर्च करना, ये आधा दूध बचाकर अपने घर भेजने के समान चोरी का काम है। जब सब रुपए भगवान के, तो सब रुपए भगवान के काम में लगने चाहिए। भगवान के काम के लिए तुम चाहे लाखों रुपए इकट्ठा करो, करोड़ों करो, पर भगवान की सेवा के लिए संग्रह करने में कोई हर्ज नहीं, किंतु ऐशार आराम और भोग के लिए यदि आपने एक रुपया भी इकट्ठा किया है, तो वो चोरी है। इस प्रकार ये सांसारिक पदार्थ और धन इत्यादि ऐश्वर्य सब भगवान के हैं, जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, पर उपभोग नहीं करना चाहिए। रुपए आदि वस्तुओं में अहंकार नहीं करना चाहिए। आपके पास 2 लाख रुपए है तो ये आपके थोड़े ही है। अब देखो आज से 70-80 वर्ष पहले का लेख है, तो 2 लाख रुपए बहुत बहुत जो है बड़ी थी। तो आपके पास 2 लाख रुपए है तो ये आपके नहीं, भगवान के हैं। यदि आपने इन रुपयों को अपनी मान बढ़ाई के लिए खर्च करने की चेष्टा की कि साहब मेरा मान हो, मेरी बढ़ाई हो, इसके लिए यदि आपने खर्च किया, ये रुपयों का उपभोग करना है। रक्षा तो इस प्रकार होती है, जैसे बैंक के खजाने में लाखों रुपए रहते हैं और उसकी रक्षा के लिए तैनात सिपाही बंदूक लेकर गश्त लगाता है, जिससे कोई उसकी चोरी न कर सके। इस प्रकार तुम्हारा अधिकार केवल रक्षा करने का है, उपभोग या चोरी करने का नहीं है। अभी